खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। सो आज की सुबह में हम सब खुदावन के कलाम में से चंद एक बातें अपनी तरबियत और नसीहत के लिए सीखेंगे कि पालूस रसूल उस हौसले उस दलेरी के बारे में बात करता है जिसके बारे में पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन बहुत ही क्या करते थे, दिलचस्पी रखते थे कि ऐसा हौसला ऐसी दलेरी उन सबको हासिल हो। और पालूस रसूल इस दलेरी के बारे में बयान करता है जो दलेरी इस दौर के ईमानदारों को हासिल है, जो कि ऐसी है कि वो बयान से बाहर है, जिसका सिर्फ और सिर्फ हम तजर्बा हासिल कर सकते हैं जब उस दलेरी को इस्तेमाल करते हैं। तो खुदावंद का बंदा पालूस रसूल ने अहदनामा में इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत जब वो उनको लिख रहा है तो उनको इस दलेरी के बारे में, इस नेहमत के बारे में, इस ताकत के बारे में, इस इख्तियार के बारे में सिखाता है। तो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका तीसरा बाप। हम उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे 13वीं आयत तक। और खुदावन का बंदा यूं कहता है, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दलेरी है और भरोसे के साथ रसाई, पस मैं दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातर सहता हूं हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बायस है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आए हम चंद लम्हों के लिए खुदा के हुजूर झुक जाएं और खुदावन की दलेरी को, इस यकीन दहानी को जो खुदा ने बख्शी है, खुदा के तख्त के सामने हाजिर होंगे और उससे उसकी हिकमत और दनाई मांगेंगे। खुदा बाप, हिकमत और दनाई तेरी तरफ से आती है, हमें हिकमत और दनाई बख्श ताकि आज के दिन में तेरे कलाम में से जो कुछ सीखें उसे अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करने वाले बने और हमारी जिंदगियों से बहुत सी जिंदगियां सबकत नमूना और असर परहीज हों और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। आमीन। तो खुदावन का बंदा पालूस रसूल जब इस हिस्सा में कहता है इफ़सियों 3 बाप उसकी 12 आयत में इस बात को कि जिसमें हमको, तो वो बात कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, कि पालूस रसूल इफ़सियों 3 बाप उसकी 12 आयत में कहता है कि जिसमें हमको, जब वो इस बात को कहता है तो वो कहता है कि हम सबको मसीह यीशु में उस पर ईमान रखने के सबब से, यानी कि यकीन कर लेने के सबब से कि वही वाहद है जो मुर्दों में से जी उठा है, वही वाहद ऐसा काहिन है जो खुदा की हजूरी में जा खड़ा हुआ, और ऐसा काहिन जो कि जब चाहे खुदा की हजूरी में जा सकता है। तो वो ईमानदारों को, उस वक्त के ईमानदारों को इस बात में सिखाता है कि जिसमें हमको उस पर, यानी कि यीशु मसीह पर ईमान रखने के सबब से दलेरी। लफ्ज दलेरी का जब वलूस रसिल इस्तेमाल करता है तो वो बयान करता है कि हमको मसीह में ये इख्तियार, ये दलेरी और ये आजादी है कि उस पर ईमान रखने के सबब से दलेरी और आजादी है और पूरा यकीन, जब वो लफ्ज लिखता ना, भरोसा है, दलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। दलेरी को हम कह सकते हैं आजादी होना, भरोसा को कह सकते हैं कि मुकम्मल यकीन, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो हमें क्या हासिल है? रसाई। रसाई का मतलब है कि किसी तक पहुंच होना, किसी तक जाने का रास्ता मालूम होना, किसी को जानना, किसी के बारे में समझ लेना कि मैं उसके साथ ऐसा रिश्ता रखता हूं। तो जब पालूस रसूल इस बात को कहता है तो वो ईमानदारों को कहता है कि हौसला रखो, दलेरी पकड़ो, यकीन करो, एतमाद तुम्हारा ज्यादा हो, क्योंकि तुम्हें मसीह यसु मसीह के साथ बात करने का और उसमें ये इख्तियार हासिल है कि तुम खुदा की हजूरी में हाजिर हो सकते हो बड़ी दलेरी के साथ। सो मेरे साथ इस हवाला को देखें कि क्यों ये दलेरी हमें हासिल है, क्योंकि जब हम पुराने अहदनामा के लोगों को देखते हैं तो वो दलेरी से नहीं बल्कि बहुत दफा खुदा के हजूर कांपते हुए जाते थे, डरते हुए जाते थे कि हो ना हो कि अगर हमने खुदा के फरिश्ते को या खुदा की हजूरी को देख लिया तो हमारे साथ क्या होगा। और पुराने अहदनामे के लोगों की जिंदगी हमारे लिए सीखने का क्या है, बहुत बड़ा नमूना है कि हम सीख सकते हैं कि वो किस तरह खुदावंद यहोवा खुदा की इबादत करते थे, उनका तरीका क्या था, उनकी सोच क्या थी, वो किस किस्म की इज्जत खुदा को देते थे। और सुनने में और पढ़ने में आया है कि तारीख बताती है कि जब यहूदी लिखने वाले जो मुसन्नफ होते थे, जब वो लिखते थे यहोवा का नाम, तो वो अपनी स्याही की पेंसिलों को बहुत दफा धोकर उससे यहोवा लिखते थे, यानी कि वो इतना मोहतरम, इतने एहतराम के साथ यहोवा की इज्जत करते थे। तो मेरे साथ एक हवाला देखें नए अहदनामा में से ही, ये हवाला हमें मिलेगा लूका की इंजील उसका पहला बाप, हम उसकी 8वीं आयत से पढ़ेंगे। और इसका तल्लक और इसमें से सीखने की जो बात हमें मिलेगी कि वो दलेरी जो आज हमें हासिल है, पुराने अहदनामा के लोगों को उस तरह की दलेरी हासिल नहीं थी। नए अहदनामा में हमें ये वाक्या मिलता है लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यसु मसीह की इंजील उसका पहला बाप उसकी 8 आयत से। और यहाँ पर जो बात चल रही है, यहूदी रिवाज के मुताबिक यहूदियों में ये रिवाज होता था कि काहिन अपनी बारी पर खुदा के हजूर जाता था और वो कुर्बानी चढ़ाता था, बहुत से सिर्फ दुआ ही करते थे, और बड़े जो काहिन होते थे उनको पाक तरीन मकान में जाने की इजाज़त होती थी, जहाँ पर वो खुदा से खुदा का कलाम सुनते और फिर आकर बनी इसराइल कौम को बताते। तो यहाँ पर हम देखते हैं 8वीं आयत में लिखा है, जब वो खुदावंद के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था। किसके बारे में हो रही है बात? लिशबा का कामत जिसका नाम जिक्रिया था। जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावन के मकदस में जाकर खुशबू जलाए। ये वो हिस्सा था जिसे पाक मकान कहते थे, जिसमें साल में पूरा साल काहिन जाकर खुशबू जलाते थे और फिर उन चिरागों को जलाते थे जिसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे अब्रानियों के खत में। तो हर काहिन को मौका होता था, उनके नाम का कुर्रा निकलता था। कुर्रे का मतलब लॉटरी, या जिसे कहते हैं कि पर्ची निकलना। जैसे आज के दौर में बहुत से लोग पैसों की लॉटरी खरीदते हैं कि शायद उनका नंबर लग जाए और उनको बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएं। सो उस दौर में जो कुर्रा होता था, उससे यहूदी लोग क्या सोचते थे, सीखते थे कि खुदा की मर्जी क्या है। उस दौर में उनके पास दो पत्थर भी होते थे और उन पत्थरों को हम आगे चलकर देखेंगे। वो दो पत्थर खास कर इस्तेमाल करते थे खुदा की मर्जी को जानने के लिए कि खुदा हमें चाह रहा है कि हम आगे बढ़ें या पीछे हट जाएं, खुदा की मर्जी को जानने के लिए। सो कुरहा किसके नाम का निकला? जिक्रिया का। ज़िक्रिया के नाम का कुरा निकला और उसे क्या थी, इजाज़त थी कि वो खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए, खिदमत गुजारी का काम करे, प्रस्तुश करे, अबादत करे, खुदा के हजूर झुके और उस जहोवा खुदा को क्या करे, धनभा कहे। और शरीयत के मुताबिक साल में एक ही बंदा जिसके नाम का कुर्रा निकलता था वो जाता था और कोई नहीं, बाकी सब बाहर खड़े रहते थे, कोई भी उस पाक मकाम में और उस पाक तरीन मकाम में दाखिल नहीं होता था, सिर्फ खास और खास लोग। और आपको याद होगा कि कुर्रे से मुराद यानी कि खुदा की मर्जी को जानना। आपको याद होगा कि जब यूना खुदावंद की हजूरी से भागा, अपने सोच के मुताबिक खुदावंद से फिरा, तो क्या निकला, कुर्रा उसके नाम का निकला। सो कुर्रा क्या था, ये ऐसा जरिया था जिससे खुदा की मर्जी को जानना या कह सकते थे इंसाफ की बात करना, कि इंसान तो एक दूसरे से झूठ बोल सकता है लेकिन ये कुर्रा झूठ या किसी की तरफदारी नहीं करेगा। सो कुर्रा ज़िक्रिया के नाम का निकल आया और उसे इजाज़त मिली कि खुदा के मकदस में जाकर खुशबू जलाए। और गौर से देखें क्या लिखा है, सुने, 10वीं आयत में लिखा है, और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। हैकल में ज़िक्रिया खुदा के हजूर झुका हुआ है, वो खुशबू जलाने के लिए गया है और तमाम लोग बाहर खड़े क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तमाम लोग बाहर हैं। तो इससे जो बात हम सीखने की हमें बात मिलती है कि वो बात क्या है, कि पालूस रसूल ने कहा कि जिसमें हमको उसके वसीला से खुदा के पास जाने की दलेरी हासिल है। मेरे साथ इस हवाला को निकालें, पालूस रसूल, ये बात इफ़सियों के खत उसके 2 बाप उसकी 18 आयत में बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है कि वो रूह जिसे रूहुल कुद्दस कहा गया है, उसके वसीला से यसु मसीह पर ईमान लाने से हम सबको खुदा के हजूर जाने की क्या है, पहुंच है, इजाजत है। और कहता है इफ़सियों 2 बाप उसकी 18 आयत में, क्योंकि उसी के वसीला से यानी कि यसु मसीह हम दोनों को, दोनों की एक ही रूह में यानी कि रूहुल कुद्दस के वसीला से बाप के पास रसाई होती है, यानी कि यहोवा खुदा इब्राहिम इजहाक यकूब का खुदा उसके हजूर जाने की हमें पहुंच या इजाजत हासिल है। और फिर अगले ही बाप में वो कहता है 3 बाप उसकी 13 आयत में, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दलेरी है और भरोसे के साथ रसाई है, भरोसे के साथ रसाई है। और यही बात यहां पर बड़े वाजह तौर पर है, क्योंकि लूका तबीब यहूदियों के उस रवाज, उस तरीकाकार को बयान करता है जो वो सालों साल से, हजारों साल से करते आए थे, कि काहन खुदा की हजूरी में जाता था, खुशबू जलाता था और कोई भी उस पाक मकाम में दाखिल नहीं होता था। तो क्या लिखा है, और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मजबा के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। और ज़िक्रिया घबरा गया और उस पर बड़ी दहशत छा गई। फरिश्ता ने उससे कहा कि ऐ ज़िक्रिया, खौफ ना कर, तेरी दुआ सुन ली गई है। ये तरीकाकार था। इसलिए आज हमें भी खुदावंद यसु मसीह हमारे लिए जो सबसे बड़ा काहिन है, अब्रानियों 4 बाप उसकी 16वीं आयत में इसी बात को हमारे लिए बयान करता है। अब्रानियों 4 बाप मेरे साथ 14वीं आयत से पढ़ेंगे। अब्रानियों 4 बाप उसकी 14वीं आयत में, कि वो काहिन जो सिर्फ और सिर्फ साल में एक दफा जाता था। अब हमारा जो काहिन है इस दौर में, कलीसियाई दौर में, जिसे हमारा अच्छा काहिन और निगाबान और ऐसा सरदार काहिन कहा गया है, जो अपना ही खून लेकर खुदा की हजूरी में चले गया ताकि हमें खुदा के पास जाने की आजादी हो, जहां कहीं भी हो। खा हम घर में हैं, सफर में हैं, कहां पर भी चल फिर रहे हैं, हम खुदा की हजूरी में जा सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। सो अब्रानियों 4 बाप उसकी 14 आयत में खुदावंत का कलाम कहता है, पस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यसू, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। इकरार क्या है? कि यसु मसीह खुदा का बेटा है, और उस पर कायम रहें। और 15वीं आयत में कहता है, क्योंकि वो हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं, दुनियावी काहिन नहीं, जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। उस दौर में काहिन सिर्फ दुआ करता था और कहता था कि ये मेरे बस की बात नहीं कि मैं तुमको शिफा दूं, ये मेरे बस की बात नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कोई अजीब काम करूं, ये खुदा के हाथ में है। तो यसु मसीह के बारे में लिखा है कि वो हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो जिस्मानी हो, जो कहे कि मेरे बस की बात नहीं या मुझे सिर्फ थोड़ी ही ताकत हासिल है। लिखा है, वो हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। यीशु मसीह बहुत सी आजमाइशों से गुजरा, लेकिन उसने कभी गुनाह ना किया। और 16वीं आयत में इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, पस से मुराद के जो कुछ हमने पीछे देखा है कि यसु मसीह हमारा काहिन है, पस आओ इस बात की बुनियाद पर, पस आगे बढ़ो, पस आओ हम फजल के तख्त के सामने दलेरी से चलें, डरते हुए नहीं, दलेरी से चलें कि हमें पूरा खुदावंद खुदा की तरफ से ये आजाज और ये आजादी हासिल है। दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद कर सकता है और मदद करे जरूरत के वक्त। और हम सबको हर रोज जरूरत पड़ती है। इसलिए आज मैं सिर्फ चाहता था कि हम इसका मुआजना करें कि आज के दौर में हम सबको आजादी हासिल है। जब हम पुराने अहदनामा के काहिनों को देखते हैं, तो सिर्फ काहिन को ही, जिसे खुदा ने चुना हुआ था, वो दुआ करने के लिए, शुक्रगुजारी करने के लिए खुदा के हजूर जाता था। लेकिन आज हम सब, खा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप नीचे बैठे हैं, हम सब यक वक्त खुदा से बात कर सकते हैं। हम यक वक्त खुदावन खुदा को अब्बा यानी कि ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। हमें गुलामी की रूह नहीं बल्कि आजादी दी गई है कि हम उसे बाप कहकर पुकारें। तो आगे चलकर हम देखेंगे उन असूलों को कि किस तौर से हमें दुआ करनी चाहिए, किस तौर से हमें खुदा के हजूर बैठना चाहिए, कि यहूदी किस तरह खुदावंद का एहतराम करते थे, क्या हम अपने ही असूल या अपने ही तरीकाकार से तो खुदा के कलाम में के मुताबिक या अपने मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। सो इसलिए पालूस रसूल कहता है कि हम सबको खुदावंद यीशु मसीह में दलेरी, आजादी और पूरा यकीन और पूरे एतमाद के साथ पहुंच हासिल है। किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं, जैसे कभी हम डॉक्टर के कमरे में जाने से पहले उसके कंपाउंडर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं? थानेदार के ऑफिस में जाने से पहले उसके मुंशी से पूछते हैं कि थानेदार से बात कर लें? या किसी बड़े अफसर से मिलने से पहले किसी ना किसी को 5, 10, 100 की पर्ची लगाकर ही आगे जाना चाहते हैं। वो निजाम नहीं, खुदावंद का कलाम कहता है कि सब मेरे हजूर आओ, और इसलिए वो कहता है ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आए हम खुदावंद के हजूर झुकें।